Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paranchi Kharani Vitranat Swayambhu Tasmat Parang Pashyati Nantaratman कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत चक्षुः रम्भितत्वमिश्चन। कठोपनिषद का दूसरा अध्याय प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र है। सर्वविदित हैं कठोपनिषद, बड़ा ही सुंदर उपनिषद है। कठोपनिषद में कठ शब्द एक ऋषि का वाचक है, कठ नाम के ऋषि जिन्होंने कहा इसको, इसलिए इसका नाम पड़ा कठोपनिषद। और यहां उपनिषद शब्द से मालूम होता है कि हमारे अज्ञान को मिटाने वाला जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान, अखंड चिदैकरस, स्वगत सजाति विजाति भेद से शून्य, एकत्व का जो बोध है, ये इस उपनिषद का प्रयोजन है। ज्ञान अज्ञान को हर लेता है, भ्रांति को मिटा देता है। अनादिकाल से भ्रांति है, हम शरीर हैं, इसको अनादि इसलिए कहा कि मालूम नहीं कब से हम अपने को जीव समझते हैं, हम अपने को शरीर समझते हैं। शरीर को बहुत से लोग अपना स्वभाव, अपना स्वरूप समझते हैं, क्योंकि शरीर ही एक ऐसी चीज है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा बहुत जल्दी समझ में आती है। प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना शरीर की संवेदना है, हमारे इंद्रियों से भी मालूम पड़ता है कि ये शरीर है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के द्वारा इस शरीर की संवेदना हमारे मन में प्रतिबिंबित होती है। ये रूपवान है, इसलिए चक्षु के द्वारा शरीर मालूम पड़ता है। ये स्पर्शवान है, इसलिए त्वचेंद्रिय के द्वारा मालूम पड़ता है। ये गंध वाला है, इसलिए नासिका से मालूम पड़ता है, इसके अंदर शब्द भी हैं। कर्णेंद्रिय के द्वारा मालूम पड़ता है, इसमें रस भी है, इसलिए रसनेन्द्रिय के द्वारा मालूम पड़ता है। पांचों इंद्रियों के द्वारा ये शरीर मालूम पड़ता है, और ये बहुत सरल है, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत भी नहीं है। एक छोटे से किट से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक, ब्रह्मादि तक पहुंच है इस शरीर तक, सबकी पहुंच है शरीर तक। इसीलिए हम लोग बहुत सरलता से बिना प्रयास आयास हम इस शरीर को अपना मानते हैं, अपना ही नहीं शरीर ही हम मानते हैं। जब भी आप अपने अहम का परिचय देते हैं तो शरीर को आगे करके देते हैं। ये दुनिया के सारे झगड़े हैं, झंझट हैं, राग द्वेष टेंशन, ये सारे शरीर को मान के ही हैं। आपको कोई पूछे आप कौन हैं, तो उस समय आपके मन में अपने परिचय की कौन सी संवेदना मन पर प्रकट होती है, तत्क्षण शरीर का परिचय आ जाता है। आपको कोई हस्ताक्षर करने के लिए बोले तो उस समय यह नहीं लगता है कि हम तो आत्मा हैं, और जो हम हस्ताक्षर करने जा रहे हैं वो आत्मा का परिचय नहीं, शरीर का परिचय है। एक क्षण भी ऐसा लगता नहीं है, मैंने इतना इस शरीर के साथ जुड़ाव है। अब यहां बैठे हैं हम तो संवेदना प्रकट है कि हम यहां बैठे हैं, यहीं पर हैं, यह सदने अहम अस्मि, इसी सदन में मैं हूं और यहीं पर हूं, और अस्मिन काले इसी समय में हूं और इसी रूप में हूं, इसी सदन में, इस समय में और इस रूप में। देश के साथ जुड़ी हुई संवेदना, मैं इस देश में हूं और इसी काल में हूं, इसी समय में, ये काल की संवेदना है, और इसी रूप में जो मैं नाम वाला, इस शरीर के आयतन वाला, जो भी कुछ हूं मैं, माने ये देश की संवेदना है, इसी देश में हूं, अर्थात दूसरे देश में नहीं हूं, इस समय में हूं अर्थात दूसरे समय में नहीं हूं, और इसी रूप में हूं माने दूसरे रूप में नहीं हूं। आत्म तत्व देश से अपरिछिन्न है, माने वो सर्वदेशिक है। आत्मे वेदम सर्वम, सर्वरूप में है और वो सर्वकाल में है। लेकिन व्यक्ति जब अपना परिचय देता है बहुत प्रारंभिक अवस्था में, वो केवल जागृति में ही नहीं, स्वप्न में भी कोई पूछे आप कौन हैं, कहां रहते हैं, किस रूप में हैं, तो उस समय हमें अपना वेदांत याद नहीं आता है। उस समय हमें ये नहीं लगता है कि हम आत्मा हैं, हमारा परिचय आत्मा है। भले हम सामने वाले को न बोले लेकिन अपने को मालूम तो हो कि हमारा ये परिचय है। लेकिन सरल स्वाभाविक हम अपना परिचय, हमारा अस्तित्व यही समझते हैं कि हम यहां हैं, इस काल में हैं, इस रूप में हैं, और ये परिचय आत्मा का नहीं है, ये शरीर का परिचय है। और ये परिचय कब से है, ये जो हमारे अंदर की संवेदना ये होने की, इसका प्रारंभ कब से हुआ। हम बहुत सी चीजों का प्रारंभ जानते हैं अपने जीवन में भी, ये शरीर का प्रारंभ भी हम जानते हैं। आपको कोई पूछता है कि आपका जन्मदिन, तो आप बहुत आसानी से बोल देते हैं वो जो जन्मदिन है वो आरंभ है, ये आत्मा का नहीं, ये शरीर का आरंभ है। हम बहुत सारी चीजों का आरंभ जानते हैं, प्रेमपुरी आश्रम में कब से आए आप तुरंत बता देंगे, अमुक समय आए। लेकिन इस शरीर को हम अपना मानते हैं, इस शरीर को ही अपना परिचय समझते हैं, ये जो प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, देहात्म भाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया का आरंभ कहां से हुआ, इसलिए शास्त्र ने कहा अनादि। इसलिए छह पदार्थों को वेदांत ने अनादि माना है, उसमें एक अज्ञान है। अज्ञान जन्य देहात्म भाव, ये संसार है अनादि, कब से नहीं जानते आत्म तत्व को, इसका कोई आरंभ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग ज्ञान का जन्मदिन मनाते हैं, अज्ञान का कोई नहीं मनाते। बहुत से लोगों ने तिथियां बना के रखी हैं, अमुक दिन अमुक स्थान पर बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान की तिथि है, लेकिन अज्ञान की कोई तिथि नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं कब से। और यही कारण है कि हम पैदा होते ही, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये शरीर तुम हो, बताने की जरूरत नहीं है कि हम अज्ञानी हैं, तो स्वाभाविक हैं, पैदाइशी हैं। इसलिए हमारे जीवन की आसपास की सारी संवेदनाएं, सारी ज्ञान देह के आसपास के हैं। हम अपने शरीर को इतना अपना समझते हैं, इतना अपना समझते हैं, कभी संदेह ही होता नहीं कि हम शरीर भी है कि नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस शरीर का बोध होता है, और इस शरीर का बोध आत्म अतिरिक्त अनात्म पदार्थ के रूप में नहीं होता है, अपितु अहम के रूप में होता है। मैं हूं, लेकिन एक बार मालूम पड़ जाए कि ये मैं नहीं हूं, यही तो कठोपनिषद का आत्मज्ञान है। एक बार पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर से अतिरिक्त चिदैकरस सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व के साथ एकत्व का बोध हो जाए। इस एकत्व के बोध से हमारा देहाध्यास मिट जाए। ये औपनिषद विद्या है। ये उपनिषद शब्द इसी धातु से बनता है। जहां पर अज्ञान का निराश हो, ह्रास हो, मिट जाए, आत्म तत्व का बोध हो और संसार के बंधन ढीले हो जाए, शिथिल हो जाए, और होता है, समझ में आता है धीरे धीरे, बहुत गहरा शरीरात्म भाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कोई गांठ बंधी है और गांठ बहुत कस के बंधी है, आप बहुत कोशिश करते हैं उसको छोड़ने की, लेकिन छूटती नहीं है। लेकिन आपके नाखून तीखे हो, यदि नाखून नहीं हो, आपने निकाल भी दिए नाखून, आप कितना भी कोशिश करो आपकी पकड़ नहीं बनती है, वो गांठ के साथ आप जुड़ नहीं पाते। इसलिए उस गांठ को पकड़ने के लिए नाखून भी चाहिए, और जैसे पकड़ में गांठ आ जाती है फिर वो ढीली होना शुरू हो जाती है, वो गांठ ढीली होना शुरू हो जाती है, और फिर आप उसको अलग करने में सफल हो जाते, ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसे देहात्म भाव एक बहुत गहरी ये ग्रंथि है, बहुत गहरी ग्रंथि, लंबे समय से चली आ रही है। पहली बात वो पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि नाखून बहुत भोथरे हैं, उसको समझ में नहीं आती, बात ही समझ में नहीं आती। इसको पकड़ में लाने के लिए नाखून चाहिए, और ये नाखून क्या है, ये हमारे जीवन में जो समझ की योग्यता है। आप लंबे समय धीरे धीरे श्रवण करते जाए, इसलिए श्रुति कहते आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, एक ही चीज को हमें बार बार सुनना है। बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अनेक विभिन्न विषयों के श्रवण की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनेक विभिन्न हम विषयों का श्रवण करते हैं तो वो सारे विषय हमारे मन पर संस्कारों का निर्माण करते हैं और वो संस्कार हमारे अंदर ग्रंथियां पैदा करती हैं। बहुत समझदार होने की ग्रंथि, ये भी एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, ये समझदार होने की भी बहुत बड़ी ग्रंथि है। विभिन्न विषयों का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, बहुत बड़ी तर्क शैली का ज्ञान भी आत्मज्ञान नहीं है। विशुद्ध आत्मतत्व जिसका श्रवण है, और बहुत ज्यादा उसका विषय नहीं है, जैसे आप बैठ करके जप करते हैं, जप का विषय अनेक नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि एक ही मंत्र हम 108 बार दोहराए, हम लाखों बार दोहराए, करोड़ों बार दोहराए, आपके मन में कभी संदेह नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है एक ही मंत्र को हमें दोहराना है, ये जप है। और वो जब फिर और गहरा हो जाता है, अर्थ प्रकाश का सामर्थ्य जप में होता है। उस मंत्र का जो अर्थ है वो प्रकाशित कैसे करेंगे? जप जप के लिए नहीं होता है, जप एक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, ऋषि प्रदत्त शब्द है, पवित्र शब्द है, इसलिए वो मंत्र है। लेकिन वो मंत्र अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो साधन है, उस मंत्र के द्वारा अर्थ का प्रकाश करना है। शब्द अर्थ तक पहुंचाने का उपाय है, और वो अर्थ को प्रकट करके लौट भी जाता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वेद अवेद हो जाते का अर्थ यही है। हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, हम तभी तक पुकारते जब तक वो व्यक्ति आता नहीं है, और जैसे व्यक्ति आ जाता है तो पुकारना बंद हो जाता है। अब व्यक्ति आ गया है, उसने अर्थ को बुला लिया, अर्थ को प्रकट किया, अब शब्द की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तब तक एक ही शब्द को दोहराते जाते हैं जब तक वो व्यक्ति आता नहीं है, जिसको बुलाना है उसको आप दोहराते जाते हैं, एक बार, दो बार, दस बार, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो शब्द के कहने से नहीं आ रहा है तो हम दूसरे शब्द का प्रयोग कर ले। आपको यदि उसी को बुलाना है तो वही शब्द काम देगा, आपको बुलाना है उस व्यक्ति को और शब्द का प्रयोग करेंगे दूसरा तो व्यक्ति कैसे आएगा? इसलिए वही शब्द आप दोहराते जाते, वही शब्द दोहराते जाते, यही अभ्यास, इसी को अभ्यास कहा है। श्रवण का अर्थ यही है, एक ही तत्व है, और उसी एक ही तत्व का हमें श्रवण करना है, एक बार नहीं करना है, अनंत बार, क्योंकि वो श्रवण एकमात्र साधन है आत्म तत्व के बोध में ले जाने का, और कोई उपाय नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं दुनिया के ज्ञान बहुत सरल है, स्वाभाविक है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, परांचिखणे व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये स्वाभाविक है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का अर्थ ये कोई गाली नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि आदमी बहुत बहिर्मुख है, ऐसा नहीं। यहां बहिर्मुख का अर्थ है इसका मुख ही, मुख माने द्वार, इसका जो दरवाजा खुला है वो बाहर खुला है, भीतर नहीं है, जहां पर विरासता है, कोई आदमी कहीं रहता है और उसका द्वार खुला है समुद्र की तरफ, तो जाएगा कहां वो? द्वार तो जाने का उपाय है, माध्यम है। आदमी दीवार से नहीं जाता है, दीवार एक अवरोध है, एक प्रतिबंध है, हमारी आंखें उसको पार नहीं कर सकती, हमारा शरीर उसको पार नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा अवरोध है, प्रतिबंध है, दीवार। आपको जाना है, आना है, तो दीवार से काम नहीं चलता है, द्वार चाहिए। और इन इंद्रियों के लिए बहुत सशक्त द्वार, ये इंद्रियां बाहर खुलती हैं, भीतर नहीं खुलती हैं। बस इतनी बात कह रही है, ये श्रुति इतनी कहती है, परांची मन इन इंद्रियों के जो दरवाजे हैं वो बाहर खुलते हैं, और जब बाहर खुलते हैं, जिधर खुलते वही तो दिखेगा। आंख हमारी बाहर खुलती है, कभी आपने देखा कि आंख लौट करके पीछे देख रही है? इसलिए आंख को आत्मा की तो बात छोड़ो, अपने चेहरे को देखने के लिए भी शीशे की जरूरत पड़ती है, प्रतिबिंबन की जरूरत पड़ती है। यदि दुनिया में शीशा न होता तो आदमी को कभी नहीं मालूम पड़ता ये शरीर कैसा है। यदि प्रतिबिंब की व्यवस्था न होती तो ये आंख इस अपने चेहरे को भी कभी नहीं जान पाती कि हम दिखते कैसे हैं। हम सारी दुनिया को जान लेते लेकिन कभी नहीं जानते कि मेरा फोटो कौन सा है। मान लो किसी अच्छे से अच्छे चित्रकार ने आपका चित्र बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन आपने कभी अपना चेहरा ही नहीं देखा हो, बहुत मुश्किल होगा वो जानना कि आपका चेहरा है, क्योंकि स्वयं की जो प्रतिविज्ञा है वो ज्ञान पूर्वक होती है। पहले ज्ञान हो और उसके बाद उस ज्ञान का विषय जब हमारे सामने दोबारा आता है तो वहां पर प्रतिविज्ञा होती वही है स्वयं। लेकिन कभी अतीत में हमने अपना चेहरा ही नहीं देखा हो किसी भी माध्यम से, तो हम जानेंगे कैसे कि ये मेरा चेहरा है, और वहां प्रतिभिज्ञा कैसे होगी स्वयं की? बहुत मुश्किल है। हमारे आंख को चेहरा अपना देखने के लिए भी माध्यम चाहिए, तब वो देखने में समर्थ हो पाती। आत्मा की तो बात बहुत दूर। हमारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों का बहुत सरलता से ज्ञान कर लेती, और इसीलिए दुनिया के ज्ञान में उपनिषद चरितार्थ नहीं है, क्योंकि हमारे उपनिषद अपूर्व विधि मानी जाती है मीमांसा के दृष्टि से। और अपूर्व विधि का मतलब होता है जो किसी से भी ज्ञान ना हो। हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं जानने के, उन साधनों के द्वारा जो तत्व जाना नहीं जाता है अपूर्व है, अपूर्व। और उस अपूर्व का ज्ञान करने में ही उपनिषदों की सार्थकता है। केवल उपनिषद, केवल शब्द एक ऐसा माध्यम है जो आत्म तत्व तक पहुंचाने में समर्थ, और इसीलिए बार बार श्रवण करने के लिए शास्त्र कहता है, श्रवण श्रवण। मैंने आपको कहा वो गांठ है ना, गांठ, उस गांठ तक पहुंच वो धीरे धीरे होती है। कभी आपने देखा होगा गांठ आप खोल रहे हैं और आपके नाखून बहुत भोत रहे हैं, वो गांठ पकड़ में नहीं आती, और जब पकड़ में नहीं आती तो वो ढीली कैसे होगी? और जो ढीली नहीं होगी तो वो गांठ छूटेगी कैसे? इसलिए जो श्रवण है ये धीरे धीरे आत्मा की पकड़ तक पहुंचा देता है, आत्मा तक पहुंचाने लगता है। फिर धीरे धीरे अपने को एहसास होता है कि हाँ पकड़ रहे हैं हम, आप धीरे धीरे मालूम पड़ने लगता है कि हाँ समझ में आने लगी बात। और एक समय ऐसा आता है कि वो समझ गए हम, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ ये भी शिथिली करोति, वो शिथिल करता है, ग्रंथि को शिथिल करता है। हमारे अंदर जो अहंकार है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, गहरा शरीरात्म भाव है, वो धीरे धीरे ये औपनिषद विद्या शिथिल करती जाती है। इसलिए अभ्यास है, ये ब्रह्माभ्यासम विदुर बुधु बुधाः। शास्त्र ने कहा कि ब्रह्माभ्यास, हमारे विद्वानों ने कहा पुनः तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। हम कहे वही, सुने वही, और जब आपस में चर्चा करें तो वही चर्चा करें। ये बहुत कठिन भी है चीजें, बहुत कठिन भी काठिन्य अनभ्यास है, और देहात्म भाव अभ्यास है। देहात्म भाव अभ्यास है कब से, और ब्रह्माभ्यास अभ्यास है कब से, आप दोनों की तुलना करेंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक जिस शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है मैं। सुबह से शाम तक जिस शब्द का सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं वो शब्द है मैं। आप सुबह उठते ही मैं शुरू हो गया, मैं जग गया, आपकी सबसे बड़ी संवेदना प्रकट होती है मैं से। मैं जग गया, मैं उठा, मैं ब्रश करूंगा, मैं स्नान करूंगा, मैं भोजन करूंगा, आपकी जितनी भी संवेदनाएं हैं उसके साथ मैं जुड़ा हुआ है। और आप सोते भी हैं तो मैं सो रहा हूं। सुबह से शाम तक जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं निरंतर अप्रमाद, वो शब्द मैं, और वो मैं शब्द आत्मा से जुड़ के नहीं है, शरीर से जुड़ के है। सुबह आप उठते ही आपको ऐसा लगता है क्या, मैं आत्मा, जान उठना है न जहां सोना है, अवस्थात्रय से अतीत यदि आत्म तत्व है वहां जगने की कोई संवेदना नहीं है, वहां सोने की भी कोई संवेदना नहीं है, वहां पर स्वप्न देखने की भी कोई संवेदना नहीं, और वो नाश्ता करने की तो बात ही छोड़ो, चाय पीने की तो बात ही छोड़ो, क्या उस समय ऐसा लगता है? नहीं, मैं आत्म तत्व, न यहां जागना है न सोना है। तो आप चाय पी रहे हैं और उस समय क्या ऐसा लगता है कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं, चाय तो शरीर पी रहा है, मैं तो आत्मा हूं, दृष्टा साक्षी, मैं चाय पीने वाले को भी जान रहा हूं, चाय को भी जान रहा हूं, और उस प्यास को भी जान रहा हूं, मैं उसका दृष्टा हूं। मैं शरीर का बहुत अभ्यास है, सुबह से शाम तक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, अहम मैं ये देहात्म भाव का अभ्यास है। और मैं सच्चिदानंद घन देहातीत हूं, मैं आत्म तत्व ब्रह्म तत्व, ये हम सुबह से शाम तक कितने बार बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा ब्रह्माभ्यास यही है, निरंतर हम सजग बने रहे कि हम शरीर नहीं है। आपको कोई अपशब्द बोल दे उस समय अपने को एहसास हो ये तो शरीर के लिए है, मैं आपका नाम लेके गाली दे देता हूं और उस समय भी आपको लगे ये तो शरीर के लिए है, तो मैं तो आत्मा हूं। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी को बोला किसी ने कि महाराज वो आपको गाली दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेटा वो तो शरीर को दे रहे हैं, मैं शरीर थोड़ी हूं, आत्मा तक शब्द की पहुंच नहीं है, और वो जो कह रहे हैं आत्मा के बारे में तो वो शब्द पहुंचेगा कहां? वो शब्दातीत पहुंच शब्द की शरीर तक, इसलिए अभ्यास ब्रह्माभ्यास अनंत जन्मों की गहरी से गहरी शरीरात्म भाव की संवेदना, और उस संवेदना को काटने के लिए शास्त्र कहता है निरंतर अभ्यास। इसलिए केवल श्रवण की बात नहीं बोली, आत्मावारे श्रोतव्यों आत्मावारे निधिध्यासितव्य। अब वो निधिध्यासन की बात बोला, श्रवण तो तन से है, श्रवण करने के बाद शब्द हमारे मन में अर्थ की संवेदना तो को निर्मित करते हैं, शब्द का यही प्रयोजन है और शब्द का यही सामर्थ्य है। वो हमारे मन में अपने अर्थ को प्रकट कर देता है, शब्द कान के द्वारा मन में पहुंचता नहीं है। ध्यान दे, शब्द की गति केवल कान तक है, आपके माइंड में अर्थ प्रकट होता है। मैंने कहा राम, तो आपका राम शब्द आपके मन में संवेदना प्रकट कर गया, राम कृष्ण शिव दुर्गा, और शब्द का एक सामर्थ्य है। शब्द हमेशा यदि वस्तु पूर्व ज्ञात न हो